देखिए इतनी चीज़ें माल से मुतलिक बता के अब कहा वह अकाम असला, अब नमाज़ें पढ़ो। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के बंदों की मोहब्बत देती है। बड़े कठोर दिल वो लोग होते हैं जो दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ के अल्लाह से तो कहते हैं या का ना वदू है या का नस्तईन, लेकिन अल्लाह के बंदों में आते हैं तो गुर्राते हैं। तफन भरा हुआ है उनके दिलों में अल्लाह के लिए, बंदों के लिए। मोहब्बत कीजिए, उसके लिए मज़हब की भी कोई कैद नहीं है। आप तड़पा करें, देखा करें, हाय अल्लाह ये चेहरे आग में जाएंगे, अल्लाह ये शिर्क के चेहरे हैं, अल्लाह ये जिना में आए, अल्लाह ये हुसन आग में जलेगा। मासूम बच्चों को देखा करें, अल्लाह इतना प्यारा बच्चा तूने इस माँ को दिया, ये इसका क्या बना देगी, ये तो इस बच्चे को पता नहीं क्या करके बना के रख देगी। इस तरह अल्लाह के बंदों के लिए तड़पे, किसी के लिए कुछ ना कर सके दुआ करते हैं कि अल्लाह इसका दिल खोल दे हिदायत के लिए, अल्लाह इसकी बीमारी दूर कर दे। हॉस्पिटल्स में कभी जाएं, पिछले कुछ महीने पहले हमारी एक साथी बीमार थी तो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो यकीन करें कि वो जो वार्ड्स में से गुजर के जाते थे हम लोग, जो बूढ़े, आप नॉर्वे में देखें यहाँ भी ऐसे ही होगा, 80-90 तो आम उम्र चलती है वहाँ, जितनी लंबी उम्र है ना, और आखिरी उम्र तन्हाई और वो हॉस्पिटल्स और ओल्ड होम्स का शिकार। इतनी हसरत उनकी आंखों में, इतनी महरूमी, कोई देखने ही नहीं आता। मैं एक दिन बाजी को देखने गई तो साथ वाले एक ही रूम में दूसरे बेड पे औरत थी, तो मैं बल्कि उनसे, उनको देखने से पहले जो नेबर में होती थी उनको मिलती थी, मैंने उनसे बात की तो बूढ़ी सी औरत थी, तो बड़ी खुश हुई ना, मुझे जबान तो उसकी नहीं आती थी, मैंने इंग्लिश में बात की, तो सीधी होके बैठ गई और फौरन उसने अपने साइड टेबल में से एक तस्वीर निकाली, तो एक बच्चे की तस्वीर दिखा रही। फिर मुझे बाजी ने बताया कि ये बता रही है कि ये मेरे बच्चे का बच्चा है, पोता या नवासा है। किधर है, कहती बाजी, कहती जब से मैं आई हूँ मैंने शायद एक दफ़ा उसको आते देखा है और बच्चा नहीं आता, और ये सारा दिन जो आता है उसको उसकी तस्वीरें दिखाती है कि देखो ये मेरा पोता है, और खुश, तो क्रिसमस पे आएगा और ये है और वो है। वो यादों में जीते हैं, मस्कीनी से मर जाते हैं दुनिया में। जिन औलादों को हम अल्लाह से नहीं जोड़ते वो हमसे कहाँ जुड़ेंगी, वो हमारी भी नहीं रहेंगी। और थोड़ा थोड़ा करते जाएं, अब मुसलमान कल्चर भी यही होता जा रहा है, अपनी अपनी लाइफ है, लिव योर लाइफ, डोंट बॉदर मी। कितनी इजाज़तें ले के तो हम अपने बच्चों से कोई काम करते हैं, कहते हैं क्यों, कि अब हमें हम फिक्र लगती है कि हम उनकी नज़र में अनएटिकेटेड ना हो जाएं। असल रास्ता मना मना बिल्ला ही है, जितना अल्लाह से जुड़ेंगे ना और जोड़ेंगे बच्चों को, फिर अकामत सलात होगी। आप अपने बच्चे को नमाज के लिए उठाते हैं, वो नहीं उठता, ये बताइए, खुदा ना खास्ता रात को आपको हार्ट अटैक हो जाए तो क्या वो बच्चा फिर उठेगा आपके उठाने पे? वो कहेगा अम्मा ने फिर उठा दिया मुझे नमाज के लिए। मुझे किसी की बात याद आती है, अपने बच्चों को नमाज के लिए सुबह उठाते थे, तो जब बच्चे बच्चों कुछ जवानी की नींद भारी होती है, कुछ इस तरह की नहीं उठते थे, तो उन्होंने एक दिन बैठ के कहा कि जब तुम नमाज पे मैं उठाऊं तो नहीं उठते, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कभी किसी अगर दिल का दौरा पड़ जाए तो फिर भी नहीं तुम उठोगे। बड़ी बात है। आज सुबह भी मैं किसी बच्चे से बात कर रही थी तो मैंने कहा नमाज तो बेसिक चीज़ है, वो सिर्फ इस बात का इजहार है कि अल्लाह आई कैन डू एवरी थिंग फॉर यू, इवन आई कैन वेक अप। मैं नमाज से के लिए जो उठाऊँ ना, ये इस चीज़ का एक सिंबल है कि अल्लाह मैं अब जिस तरह आज नमाज के लिए उठी है ना, तो इस तरह तेरे रास्ते में ज़रूरत पड़ी तो मैं नींद छोड़ के भी भागूंगी। हर नमाज तो यही सबक देती है, ये नमाज कोई आखिरी चीज़ नहीं है, ये तो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है कि दिन में 5 बार तुम्हें आदत पड़ जाए कि अल्लाह की जब कॉल आ जाए तो काम आई एम कमिंग, आमन्ना व सद्दकना लब्बैक व सादैक, फिर इंसान अल्लाह के काम करता है ईमान से। नमाज से तो एनर्जी मिलती है, ये नहीं कहा नमाज पढ़ो बल्कि कायम करो। नमाज कायम कैसे होती है? दो तरह, एक होती है हुकूमती सतह पे, ऐसी कमेटियां बन जाएं कि सारे नमाज कायम करें, जमात की नमाजें हों और उसका एक पूरा निज़ाम हो। दूसरी फ़र्द की सतह पे नमाज कायम होती है, और वो क्या है, इन सलात तनहा अनिल फ़ख्शाई वल मुनकर, कि जो नमाज पढ़ी है उसका असर अपनी शख्सियत पे दिखाओ। और नमाज तो बंदे को तोड़ती है, ये भी एक अलग मौजू है, लेकिन हम सब ज़रूर अपनी नमाजों का जायज़ा लें। अभी तक अगर आप देखें तो हमने अकीदे को, अल्लाह के रास्ते में माल देने को, और तीसरी चीज़ आप नमाज में आए हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप सारी ज़िंदगी नेकियां करते रहे, अल्लाह को तो उसकी कोई परवाह नहीं है। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, आप किसी को कहते हैं दाढ़ी रखो, भाई पहले नमाज तो पढ़ाओ। अल्लाह की मोहब्बत तो एक ऐसा बीज है कि जो बंदे के अंदर फिर ऐसे ऐसे रंग भर देता है कि बंदे को इसकी परवाह ही नहीं रहती कि मुझे लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, उनको अल्लाह की नेमतें दिखाएं, कदर करवाएं, देखो ये किसने दिया, ये किसने दिया। कभी अल्लाह की नेमतों के मुकाबले दूसरी चीज़ें दिखाएं कि अगर अल्लाह ये ना करता तो हम क्या करते। फिर उसके बाद वात ज़का, फिर ज़कात की बात हो गई, ज़कात देने वाले फ़र्ज़ ज़कात जो देनी पड़ेगी। तस्किया, ज़कात के अलावा उसमें दो चीज़ें हैं, बढ़ोतरी की इंग्लिश है ग्रोथ, यानी ज़कात देने से माल की ग्रोथ होती है, बढ़ता है माल। जैसे आपके जिस्म में कोई बीमारी होती है ना, फिर ऑपरेशन करवा के वो बीमारी निकलवा देते हैं तो फिर आपकी हेल्थ होती है, फिर आपकी सेहत अच्छी होने लगती है। इस तरह माल से जब हम फालतू माल निकाल देते हैं ना, तो फिर हमारी सेहत होती है, फिर बाकी माल भी फ्लरिश करता है, और क्लिनजिंग के मानों में भी आता है, क्लीन हो जाता है हमारा बाकी माल। फिर इसके बाद अगली चीज़ जो अल्लाह जिसको राइटियस डीड्स में लाते हैं वो क्या है, वल मूफून नबी अहदिहिम इज़ा आहदु, वो वादा पूरा करने वाले होते हैं जब वादा कर लें। किससे? अल्लाह से तो करना ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक वादा है, इया का नाबुदु एक वादा है, इया का नस्ताइन एक वादा है, कि अल्लाह तुझे ही एक मानूंगी, तेरी ही बंदी बन के रहूंगी, तुझसे ही मदद मांगूंगी। अल्लाह के साथ अपने टर्म्स को अच्छा रखना। और अगर दूसरे लेवल पे ले लीजिए मखलूक यानी बंदों के साथ वादे क्या होंगे, तो हर मौका एक वादा है, शादी एक वादा है, मंगनी एक वादा है, किसी को कहना मैं आऊँगी ये वादा है, इस वक्त पे आना ये वादा है, वक्त की पाबंदी वादा है। देखिए हर वादा लीगल नहीं होता। आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, आप नहीं इस घर का किराया देंगे, आपको वो पूछ लेंगे, आप इस मुल्क में रहते हैं आप टैक्स नहीं देंगे, वो आपसे पूछ लेंगे। लेकिन कुछ वादे तो ऐसे हैं जो हमारी फितरत में लिखे हुए हैं, अखलाकी वादे होते हैं। मसलन बच्चा पैदा होता है, लिख बताइए कहाँ है वो एग्रीमेंट जो माँ बाप के और अल्लाह के बीच में होता है कि हम इस बच्चे को ज़रूर पालेंगे। वो उनकी फितरत में लिखे हुए हैं कि इस बच्चे को पालना है, और बच्चे बड़े होने पर अपने माँ बाप को ना पूछें तो कौन सी अदालत उनको सजा देगी? कोई भी नहीं। लेकिन फितरत में गुंदा हुआ वादा कि हम अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेंगे, तो अहद चिकनी नहीं करनी। अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा को जितना इसका पाबंद किया जाता है, उतनी हमारे अंदर डिसऑर्डर और डिसिप्लिन की कमी है। हम कभी कमिट होना ही नहीं चाहते, हम कहते नहीं देख लेट सी क्या होगा। दिल में 100% यकीन होता है हमने जाना है कहीं, लेकिन हम अगले बंदे को यकीन नहीं दिलाते। कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि हम लोग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, ऑनलाइन पे भी ऑन साइट भी कुछ होते हैं, फ्लायर होते हैं, और उसमें कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन है और ये किराइए, ताकि आपका जब पहला दिन हो तो हम आपको फुली एंटरटेन करें। यकीन करें ये एक इंतहाई दुख की बात है, और ये ग्लोबली मैंने ये चीज़ जहाँ तक भी पहुँच हो सकी देखी है कि 10 to 15% लोग उस रजिस्ट्रेशन डेट पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जितने रजिस्ट्रेशन फिर होते हैं उसमें 80% रजिस्ट्रेशन कब होते हैं, जब कोर्स शुरू होता है, वो ओरिएंटेशन हो जाता है, और उस दिन अनएक्सपेक्टेडली उससे 10 गुना लोग आ जाएंगे, क्या जी नहीं अभी नहीं, और टिकट लेनी पड़ जाए किसी चीज़ पे तो आखिरी दिन तक नहीं लेते, कहते नहीं देखेंगे क्या होगा, डोर पे जाके ले लेंगे। यानी डिसऑर्गेनाइज की बात कर रही हूँ हम, आप शादी पे नहीं जा रहे, बता दें अगले को कि मैं नहीं आऊँगी, ताकि आपकी जगह किसी और को बुला ले। तो इसको ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं वो जो हमने 4 किस्म के लोग डिस्कस किए थे ना, इनमें कुछ नेकियाँ एक में, कुछ दूसरे में, कुछ नेकों में, नेक लोगों में, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों में, तो सबको मिलाएंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो बहुत अहम भी है, और हम चल पड़े आखिरी चीज़ की तरफ, और वो क्या है कि वस्साबरीन, सब्र करने वाले, कब कहाँ, फिल बसाई तकलीफ़ों में, बीमारियों में, वद्दर्राई ज़र्र लग गया, बीमारी आ गई, और वहीन अलबास लड़ाई के वक्त। सब्र तो ऐसे है कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, पूरा दीन एक लफ्ज में अगर आप उसको कह देना तो वो सब्र है। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले तौहीद, सब्र ना हो तो क्या एक अल्लाह पर इंसान तवक्कुल कर सकता है? हर गली में तो एक खुदा बुलाने वाला है कि आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारे काम करूं। तौहीद सब्र सिखाती है कि एक रब, एक अल्लाह पे सब्र कर लो। उसके बाद नमाज, सब्र ना हो तो क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? अल्लाह तो खुद कहते हैं कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आपका दिल चाहता है खाऊं, पीऊं, सोऊं, बातें करूं, यही 4 चीज़ें चाहिए होती है ना नफ्स को। नमाज में ना आप खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं, صبر سکھاتی ہے. یہ پانچ نمازیں ہیں, چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہیں پیشنس کے. آج کتنی بے صبری ہے. کل میں تحریمہ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ قرآن سے جب سے جڑی ہیں آپ نے کیا سیکھا ہے, تو یہی کہا نا آپ نے کہ میں نے صبر سیکھا ہے. ابھی پانچ چھ پارے ان کے ہوئے ہیں اس حساب سے, لیکن یہ کہتی ہیں میں نے صبر سیکھا ہے کہ میرے اندر بہت صبر آ گیا ہے, پہلے میں برداشت نہیں کرتی تھی. اور آج یہ جو ہائپرنیس ہے نا, یہ بے صبری کا کلچر ہے. ہم نے خود ہی اپنے بچوں کو ہائپر کر لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ منتیں کر کے تیری تجھے بگاڑ دیا. ہم وقت سے پہلے چیز تیار رکھتے ہیں اور بچہ روئے بعد میں اور اس کے منہ میں فیڈر پہلے دے دیتے ہیں تو بے صبر ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں ہماری بات مانیں گے. ہم نے تو بچپن سے ان سے کپڑے بھی پوچھ پوچھ کے پہنائے ان کو, تو آج بڑے ہو کے رشتہ کیسے وہ آپ کی پسند کا کر لیں. تو صبر زندگی میں بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اس پہ صبر کی بات ہے بیماریوں اور دکھوں پہ. اگر آپ غور کریں نا تو صبر کا ایک بڑا ہی خوبصورت رخ ہے. صبر جو ہے نا, میں اس وقت جس اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہوں نا, وہ صبر کیا ہے, تقدیر کے فیصلوں کو مان لو. کیونکہ جب میں اس آیت کو دیکھتی ہوں تو ظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے, لیکن تقدیر کا موضوع نہیں, وہ صبر میں چھپا ہوا ہے. القدر خیرہ و شرہ من اللہ. یہ جملہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں, اور یہ ایمان کی ڈیٹیلز میں آتا ہے کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ. میری تقدیر میں کوئی خیر آ گئی یا مجھے کوئی شر پہنچ گیا, میں بیمار ہو گئی یا میں صحت مند ہو گئی, مجھے اللہ نے بچہ دیا یا نہیں دیا, اللہ نے مجھے اچھا شوہر دیا یا برا دیا, مجھے اچھے ان لاز دیے یا برے دیے, مجھے خوبصورت بنائے یا نہ بنائے. ان دو ہی چوائسیز میں ہم جی رہے ہیں نا. ہم جتنے لوگ ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر ایک الگ کہانی رکھتا ہے. ہم سب کی شکلیں بھی فرق ہے. ایون سگی بہنیں بھی ہوں گی, ٹوئنس بھی ہوں گے, تو ہماری تو فرق ہوگا تھوڑا سا. ہماری شکل و صورت میں فرق ہوگا, فیچرز میں فرق ہوتا ہے. مان لیجیے بس یہی تھے بچے نصیب میں, یہی شوہر نصیب میں تھا, یہی سانس ملنی تھی مجھے, یہی نن تھی میرے نصیب میں, یہی گھر تھا, میں نے ایسے ہی پیدا ہونا تھا, میری ناک چپٹی ہی تھی, میرا رنگ کالا ہی تھا. ٹھیک ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. دیکھیے وہی بچے گا جو اللہ کے فیصلوں کو اپنی خوشی بنائے گا.